पृष्ठ संख्या 205, आज का समय और कविता का संकट। आजकल हिंदी कविता की स्थिति अत्यंत विचित्र है। कवियों को एक से बढ़कर एक पुरस्कार मिल रहे हैं, लेकिन कविता को पाठक नहीं मिल रहे हैं। जैसे तैसे कविता की किताबें छप रही हैं, लेकिन अत्यंत सीमित संख्या में। किसी की कविता संग्रह की 1,000 से ज़्यादा प्रतियां नहीं छपती, वह भी अगर सरकारी खरीद ना हो तो दुकानों में पड़ी रहती हैं। किताबों के बाजार में उनकी कोई मांग नहीं है। कविता को पाठकों तक पहुंचाने का एक माध्यम छोटी पत्रिकाएं हैं, जिनमें से अधिकांश की दशा अत्यंत दयनीय है। हिंदी की कोई भी लघु पत्रिका 1-2 हज़ार से अधिक नहीं छपती, और वह भी अनियमित। जो केवल कविता की पत्रिकाएं हैं, उनकी हालत और भी खराब है। हिंदी के कुछ दैनिक अखबार अपने पाठकों को स्वाद बदलने के लिए रविवार के संस्करण में थोड़ी जगह कविता को देते रहे हैं। उनमें से कुछ ने अब वह भी बंद कर दिया है, और पाठकों का स्वाद बदलने या बढ़ाने के लिए कविता से अधिक जायकेदार मसालों की खोज कर ली है। हिंदी समाज में भी कविता की पहुंच बहुत सीमित है। आखिर हिंदी में कविता की किताबें और पत्रिकाएं कितनी छपती हैं, और जो छपती हैं उनमें से कितनी पाठकों तक पहुंच पाती हैं? सोचने की बात यह भी है कि जो पाठकों तक पहुंचती हैं, उनमें से कितनी पाठकों के दिल दिमाग तक पहुंच सकती हैं। हिंदी में कविता लिखने, पढ़ने और उसकी चर्चा करने का काम मुट्ठी भर साहित्यिक समुदाय के लोग करते हैं। कविता के प्रमुख पाठक कवि ही हैं। वह एक दूसरे की कविताएं पढ़ते हैं, उन पर बातें करते हैं और कभी-कभी लिखते भी हैं। कवियों के बाद कविता के पाठक वह हैं जो साहित्य के पुरोहित माने जाते हैं, उन्हें आलोचक भी कहा जाता है। वह कोई किताब तभी पढ़ते हैं जब उसे पढ़ना जरूरी होता है। इन सब के साथ ही कविता के पाठक वह भी हैं जो साहित्यिक समुदाय में शामिल होने की तैयारी में कविता उसी तरह पढ़ते हैं जैसे उपन्यास और कहानियाँ। कविता का एक बड़ा पाठक वर्ग शिक्षा संस्थाओं में पाया जाता है, जो जरूरत के मुताबिक मजबूरी में कविता पढ़ता और पढ़ाता है। इन सबसे अलग कविता का एक और पाठक समुदाय है, जिसे साधारण पाठक कहा जाता है। वह पृष्ठ संख्या 206 साहित्यिक समुदाय का हिस्सा नहीं है, उसके हाशिए पर रहता है और साहित्यिक समुदाय के कर्म कर्म को सहता, भोगता और स्वीकार करता है। वह मनुष्य और उसकी संस्कृति में दिलचस्पी के कारण कविता पढ़ता है। इसी साधारण पाठक के पास पहुंचकर कविता सचमुच सार्थक होती है, क्योंकि वह उसकी चेतना का हिस्सा बनती है। चिंता की यह बात है कि वही साधारण पाठक समुदाय कविता से क्रमशः दूर होता जा रहा है। उसमें कविता पढ़ने की इच्छा, जरूरत और आदत घट रही है। साहित्यिक समुदाय के बाहर के व्यापक समाज में कविता के लिए जगह धीरे धीरे कम होती जा रही है। कविता ही नहीं, बाकी साहित्य का भी आज के सामाजिक जीवन में कोई विशेष स्थान नहीं है। साहित्यिक समुदाय के लिए भले ही साहित्य जीवन के एक शौक, पेशा या सीढ़ी के रूप में महत्वपूर्ण हो, लेकिन वह व्यापक जनजीवन में कोई जरूरी, सक्रिय और जीवंत शक्ति नहीं है। हिंदी में कुछ ऐसे कवि हैं जिनके लिए कविता लिखना शतरंज खेलने जैसा है। उससे उन्हें एक ओर बौद्धिक व्यायाम का लाभ मिलता है, तो दूसरी ओर उच्च कोटि के शौकीन कहलाने का सुख भी प्राप्त होता है। एक और जमात ऐसे कवियों की है जो कविता का मदारी की बंदरिया की तरह उपयोग करते हैं और उससे पैसा बटोरते हैं। इन दोनों प्रकार के कवियों को अगर आज के समाज में कविता की दुर्गति की कोई चिंता ना हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हिंदी में ऐसे भी कवि हैं जिनके लिए कविता आत्मा की पुकार है, अपने समय की गवाह है और अपने समाज की खबर भी। ऐसी कविता समाज से अलग रहकर सार्थक नहीं होती, क्योंकि पुकार में दूसरे तक पहुँचने की बेचैनी होती है और उत्तर पाने की आकांक्षा भी। जब साहित्यिक समुदाय के बाहर के व्यापक समाज में ऐसी कविता की पहुँच और प्रभाव का अभाव हो, तब मानना होगा कि समाज से कविता के संबंध के बीच कोई बड़ी दरार आ गई है और समाज से कविता का रिश्ता टूट गया है। आज की अधिकांश हिंदी कविता, चाहे वह व्यक्तिवादी हो या जनवादी, केवल साहित्यिक समुदाय की दिलचस्पी की वस्तु रह गई है। यह स्थिति हिंदी समाज और हिंदी कविता दोनों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि हमारा समाज एक गहरे सांस्कृतिक संकट से गुजर रहा है। व्यापक समाज से कविता के रिश्ते के टूटने का अनुभव अनेक कवियों को हो रहा है। जो कवि इस संकट के बारे में सचमुच सजग हैं, वह रचना के स्तर पर उससे जूझ भी रहे हैं। ऐसे कवि अपनी कविताओं में समाज से कविता के वास्तविक और संभावित संबंधों की खोज और पहचान कर रहे हैं। लेकिन कुछ दूसरे कवि समाज में कविता के संकटग्रस्त स्थिति से निराश होकर भविष्य के लिए कविता लिख रहे हैं। वे अपनी कविता की असामाजिकता की जांच परख करने और उसे बदलने के पृष्ठ संख्या 207 बदले आज के समाज को ही कविता विरोधी कहकर भवभूति की तरह भविष्य के समान धर्माओं के लिए इस उम्मीद में कविताएं लिख रहे हैं कि आएंगे दिन कविताओं के। किसी कवि के निराशा में डूबे दिल के खुश रखने को गालिब यह ख्याल अच्छा है, लेकिन आज के समय में कविता की दुर्गति और समाज के सांस्कृतिक संकट का यह कोई समाधान नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि साहित्य के पुरोहितों को न कविता की इस नाजुक स्थिति की खबर है, न उस व्यापक सांस्कृतिक संकट का बोध जिससे यह नाजुक स्थिति पैदा हुई है। वह अपने अपने यजमानों का जय जयकार करते हुए उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि कहीं कोई संकट नहीं है। आज के समाज में कविता जिस संकट का सामना कर रही है, वह ना अचानक आया है और ना अकारण। वह लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। सभ्यता के विकास के साथ समाज से कविता का संबंध बदलता रहा है। व्यापक जनजीवन से कवि की अंतरंगता क्रमशः कम हुई है। कविता के इतिहास में अब तक तीन मूलगामी परिवर्तन हुए हैं। सभ्यता के इतिहास में संप्रेषण की पहली अवस्था मौखिक थी, दूसरी लिखित और तीसरी अवस्था मुद्रण या प्रकाशन की है। इन तीनों का कविता के स्वरूप पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। आरंभिक काल में जब मानव समाज मौखिक संस्कृति की अवस्था में था, तब कथा की तरह कविता भी मौखिक थी। उस समय कविता व्यक्तिगत कला नहीं, सामूहिक क्रियाशीलता थी जिसमें पूरा जन समुदाय शामिल होता था। तब कविता सामाजिक जीवन के धर्म और कर्म के अनिवार्य तथा अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई थी। जनजीवन पर उसका प्रभाव बहुत व्यापक था और गहरा भी, लगभग जादुई प्रभाव। उस समय कविता प्रार्थना थी, भविष्यवाणी थी, आप्तवचन थी और आर्षवाक्य थी। वह सत्य के स्रोत और ज्ञान के साधन के रूप में सर्वजन सुलभ थी, क्योंकि संपूर्ण समाज के जीवन, व्यवहार और अनुभव की भाषा में उसकी रचना होती थी। जन समुदाय तक उसके पहुँचने में न कोई बाधा थी, न शर्त और न भेद की स्थिति। उस समय कविता मनुष्य की कल्पना और चिंता की अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम थी और उसकी सामाजिकता और मानवीयता के विकास का साधन भी। जब मानव समाज मौखिक संस्कृति को पीछे छोड़कर लेखन की संस्कृति की ओर बढ़ा, तब साहित्य केवल कविता और कथा तक सीमित नहीं रहा। उसकी सीमा का विस्तार हुआ और नए नए रूपों का विकास। लेकिन तभी साहित्य की संस्कृति में एक अस्थायी विभाजन भी हुआ। मौखिक साहित्य से लिखित साहित्य अलग हो गया। मौखिक साहित्य लोक साहित्य बन गया और लिखित साहित्य शिष्ट एवं विशिष्ट साहित्य कहा जाने लगा, क्योंकि उसके लेखक समाज के अभिजात समुदाय के। पृष्ठ संख्या 208 विशिष्ट लोग थे। इस विभाजन के साथ साहित्य के बोध और प्रभाव का भी विभाजन हुआ। लोक साहित्य का प्रभाव क्षेत्र अलग और लिखित साहित्य का अलग हो गया। समाज का अधिकांश जन समुदाय जो अनपढ़ और निरक्षर था, वह लोक साहित्य से जुड़ा रहा, जबकि मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोग लिखित साहित्य के लेखक और पाठक बन गए। इस प्रक्रिया में जहाँ मौखिक साहित्य की भाषा से लिखित साहित्य की भाषा का अलग विकास हुआ, वहाँ दोनों के बीच की दूरी और भी बढ़ी। सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से लिखित साहित्य मौखिक की तुलना में नया था और उसके लेखक पाठक समुदाय का समाज में वर्चस्व भी था, इसलिए वह साहित्य की मुख्य धारा बन गया। यद्यपि इस मुख्य धारा के लेखक अपने साहित्य में संपूर्ण समाज के प्रतिनिधित्व का दावा करते थे, परंतु वह प्रतिनिधित्व प्रतीकात्मक ही होता था, वास्तविक नहीं। साथ ही उसमें किसी अनपढ़ और निरक्षर जन समुदाय के प्रतिनिधित्व का दावा किया जाता था। वह उस साहित्य का पाठक नहीं होता था जहाँ साहित्य और राजनीति में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया की त्रासद विडंबना है, जो पहले भी थी आज भी है। साहित्य की संस्कृति में मौखिक से लिखित के अलगाव का सर्वाधिक दूरगामी प्रभाव कविता पर पड़ा। उससे कविता का आंतरिक स्वरूप और बाहरी रूप तो बदला ही, काव्य अनुभव की पूरी प्रक्रिया रूपांतरित हो गई। कविता श्रुति और स्मृति न रहकर पाठ बन गई। वह सामूहिक संवाद की जीवंत प्रक्रिया के बदले व्यक्तिगत रूप से अवसाद की वस्तु हो गई। यही नहीं, वह व्यापक जनजीवन से अलग और उस जीवन की भाषा से दूर जाकर एक सीमित समुदाय के सांस्कृतिक शौक का सीमित साधन बन गई। कविता जब लिखित रूप में पाठ बनी, तब उसमें रचनात्मक प्रयोग की संभावनाएं जरूर बढ़ी, लेकिन उसकी रचना से पाठ तक की पूरी प्रक्रिया विशिष्ट और व्यक्तिगत हो गई। वह बहुसंख्यक जनसमुदाय के लिए सहज सुलभ नहीं रही। उसके आस्वाद के अधिकारी थोड़े से विशिष्ट नागर, सहृदय, रसिक, विदग्ध और पीड़ित रहे। कविता जब मौखिक से लिखित अवस्था में आई, तो वह पूरे समाज की संजीवनी शक्ति नहीं, बल्कि एक सीमित समुदाय के लिए मकरध्वज बन गई। अब तक के इतिहास में कविता इस स्थिति से तभी उभरी है जब वह मौखिक से लिखित के विभाजन की सभी सीमाओं को तोड़कर विकसित हुई है, जैसे कि भक्ति काल की कविता। लेखन से मुद्रण की संस्कृति में प्रवेश के कारण साहित्य से समाज का, विशेषतया कविता का संबंध एक बार फिर बदला। छपी हुई किताबों और पत्रिकाओं के साथ साहित्य की दुनिया में लोकतंत्र आया, क्योंकि छपे हुए साहित्य को बाजार से खरीदकर कोई भी पढ़ सकता है। जाति और लिंग संबंधी विधि निषेध की चिंता, पृष्ठ संख्या 209 से मुक्त होकर, बाजार ऐसे विधि निषेध को नहीं मानता, लेकिन बाजार से खरीद कर पुस्तक पढ़ने के लिए एक तो शिक्षित होना जरूरी है और दूसरे खरीदने के लिए सक्षम भी। भारत जैसे देश में जहां आज भी अधिकांश जनता इन दोनों क्षमताओं से वंचित है, वहां समाज का बहुत बड़ा हिस्सा साहित्य की दुनिया से अपरिचित है। जो साहित्य की दुनिया में रहते हैं, उनके सामने दूसरी कठिनाइयां हैं। साहित्य की दुनिया में पुस्तक बाजार के आने के बाद संप्रेषण की प्रक्रिया कई तरह से प्रभावित हुई है। मौखिक कविता के काल में कवि का अपने श्रोताओं से जो आत्मीय संवाद था, वह लेखन का दौर आने पर खंडित हुआ। लेकिन मुद्रण के दौर में लेखक और पाठक के बीच बाजार के आ जाने के कारण दोनों के बीच का बचा हुआ संवाद भी टूट गया। आज का कवि किसी वास्तविक पाठक के लिए नहीं, बल्कि संभावित पाठकों के लिए लिखता है। दूसरी ओर आज का पाठक छपी हुई रचना को हमेशा अकेले पढ़ता है, मानसिक रूप से और भौतिक रूप से भी। आज के कवि को अपनी पुकार के उत्तर की उम्मीद नहीं होती, इसलिए कविता अपनी सहज तथा स्वाभाविक संवादधर्मिता छोड़कर एक आलाप बनती जा रही है। लगता है कि आज के समय में कविता कवि के एकाकीपन की व्याख्या होने के लिए अभिशप्त है। आज की कविता के सामने एक बड़ा संकट संस्कृति के उद्योग का विस्तार है। इससे समाज में कविता की जरूरत खतरे में है और उसका अस्तित्व भी। उसकी सार्थकता के बारे में तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। संस्कृति के उद्योग के अनेक रूप हैं, लेकिन उसका सबसे शक्तिशाली रूप टेलीविजन है। यह संस्कृति का उद्योग फैंटेसी की दुनिया रचता है, जिसमें झूठे सच का विस्तार होता है। वह ऐसी माया की संस्कृति गढ़ता है जो रहस्य, रोमांच, विलक्षणता और सनसनी के सहारे चलती है। उसमें अचरज का राज होता है, जो दर्शक को उत्सुकता, जिज्ञासा, आश्चर्य और इंतजार के अंतहीन सिलसिले में बांधे रखता है। वह जीवन की वास्तविकता को सामने लाने के बहाने वास्तविकता के बोध को रहस्यमय बनाने और झूठ परोसने का माध्यम है। यह दृश्य माध्यम छद्म चेतना की खान है और नकली हृदयों का कारखाना। हिंदी में यह माध्यम अति आधुनिक टेक्नोलॉजी और अत्यंत आदिम मानसिकता के सहयोग से ऐसा अति यथार्थवादी मानस पैदा कर रहा है, जो उत्तेजना और मौज के भंवर से बाहर निकलना नहीं चाहता, और अगर कभी निकलता भी है, तो वह कविता का सामना करने के काबिल नहीं रहता। पूंजीवादी सभ्यता में मनुष्य को वस्तु बनाने की जो सर्वग्रासी प्रक्रिया चलती है, उसका शिकार मनुष्य की चेतना ही नहीं, उसकी इंद्रियां भी होती हैं। फिल्म और टेलीविजन के माध्यम से आँख को अपने अनुकूल बनाने में बुर्जुआ सभ्यता बहुत पृष्ठ संख्या 210 दूर तक सफल हुई है। फिल्म के प्रसंग में आर्डोनो ने ठीक ही कहा था कि बुर्जुआ बुद्धिवाद की चमक दमक का जितना असर हमारी आंखों पर है उतना अभी कानों पर नहीं। कान अब भी सुनने के सुख के आदिम प्रभावों को एकदम नहीं भूले हैं, इसलिए आज भी उन्हें संगीत अच्छा लगता है। शोर नहीं, शोर बुर्जुआ सभ्यता की अस्थाई विशेषता है। इससे स्पष्ट है कि कान पर अभी भी बुर्जुआ सभ्यता का पूरा कब्जा नहीं है। यही कारण है कि सारी शास्त्रबद्धता, यंत्रीकरण और व्यावसायिकता के बावजूद सहज संगीत का सार्वभौम प्रभाव बना हुआ है। अगर कविता अभी पूरी तरह बुर्जुआ सभ्यता का शिकार नहीं हुई है, तो उसका एक कारण यह है कि कविता का आज भी जितना संबंध आँखों से है, उससे अधिक कानों से है। वह मौखिक संस्कृति के युग में लंबे काल तक श्रव्य रही है। लय और छंद के रूप में नाद से उसका अंतरंग संबंध रहा है, और अर्थ की संरचना से शब्द की योजना के आत्मीय संबंध के सहारे उसकी संगीतमयता विकसित होती रही। लिखित रूप में आने पर कविता आंख की वस्तु बनी, और बाद में मुद्रित होने पर वह पहले से अधिक चाक्षुष हुई। फिर बिंबवाद ने कविता को विशेष रूप से चाक्षुष बनाने की कोशिश की। इस कोशिश का बेतुकापन तब उजागर हुआ जब ठोस कविता का फैशन आया, जिसमें कविता से संगीत को पूरी तरह निकाल कर उसमें ठोसपन लाने का प्रयत्न हुआ। तब यह भी कहा गया कि कविता में शब्द किसी अर्थ के संकेत नहीं बल्कि वस्तु हैं, और कविता का कोई अर्थ नहीं होता, वह जो है सो है। उसके बाद वही हुआ जो होना था। कविता की बनावट अमूर्त चित्रों से होड़ करने लगी। कागज के पन्नों का आकार प्रकार कविता का रूपात्मक आधार बनने लगा। कविता की पंक्तियों के ऊपर और नीचे की खाली जगहें कविता की संरचना का हिस्सा होने लगीं। इस तरह कविता की कला लिखावट और छपाई की कला बन गई। कविता को अत्यंत चाक्षुष बनाने की कोशिश का यही परिणाम होना था। कविता स्वभाव से चाक्षुष कला नहीं है, वह शब्दों की साधना है, और शब्द सगुण साकार होते हैं बोलने के समय, केवल पढ़ने पर नहीं। कविता के रूप की पूर्णता और गुणों की समृद्धि का जैसा साक्षात्कार उसे सुनते हुए होता है, वैसा पढ़ने के दौरान नहीं। जिन्हें निराला, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह और आलोक धनवा का काव्य पाठ सुनने का अवसर मिला है, वह जानते हैं कि कवि से कविता सुनने का अनुभव उसे किताब में पढ़ने से कितना अलग और समृद्ध होता है। काव्य पाठ की प्रक्रिया से भाषा की स्थानीयता और कथन भंगिमा का सौंदर्य खुलकर प्रकट होता है, और अर्थ की नई संभावनाएं भी उजागर होती हैं। कविता की जिंदगी के लिए श्रव्य परंपरा के महत्व की पहचान आज भी कई पृष्ठ संख्या 211 जगह मिलती है। आज भी उर्दू का हर शायर गजल या शेर कहता है, लिखता नहीं, जैसा कि हिंदी के कवि करते हैं। बंगला में आवृत्ति की परंपरा ने कविता की सामाजिकता की रक्षा की है और उसे नई जिंदगी दी है। हिंदी कविता को संस्कृत के उद्योगों के खतरे से बचाने के लिए उसके श्रव्य रूप की चिंता जरूरी है, लेकिन कविता के श्रव्य रूप की चिंता का यह अभिप्राय नहीं है कि उसे गीत, गाना या भड़ैती बना दिया जाए। मेरा निवेदन यह है कि कविता केवल विशेषज्ञों के लिए ना हो, व्यापक समाज के लिए भी हो। वह केवल पढ़ने के लिए ना हो, सुनने सुनाने लायक भी हो। अगर कहानी को बचाने के लिए तरह तरह के प्रयोगों के बाद किस्सा गोई की मांग उचित है, तो कविता के श्रव्य रूप और गुण की चिंता उचित क्यों नहीं है? संस्कृत के उद्योग से उपभोग की संस्कृति का गहरा रिश्ता है। संस्कृति के उद्योग से उपभोग की संस्कृति का गहरा रिश्ता है। कोई भी उद्योग केवल उपभोग की वस्तु ही पैदा नहीं करता, उस वस्तु की जरूरत और इच्छा भी पैदा करता है। यह बात दूसरे उद्योगों की तरह संस्कृति के उद्योग यानी कि फिल्म, टेलीविजन और बाजारू साहित्य के उद्योग के बारे में भी सच है। आजकल संस्कृत का उद्योग अत्यंत तेजी से फैल रहा है, और समाज के सांस्कृतिक जीवन में उसका असर लगातार बढ़ रहा है। यह संस्कृति का उद्योग मायावी संस्कृत के वर्चस्व का साधन है। वह जन चेतना को भरमाने, जड़ बनाने, नियंत्रित करने और उसे सहमति के साँचों में ढालने वाली प्रायोजित संस्कृति है। संस्कृत का उद्योग जो वस्तु पैदा करता है, उसकी उपयोगिता सनसनीखेज अनुभव से जुड़ी होती है और एक बार के उपभोग के बाद व्यर्थ हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि संस्कृति के जिन रूपों की रचना और बोध के लिए संवेदनशीलता, कल्पना और विचार की संजीदगी जरूरी है, उनकी दशा समाज में असहज हो जाए। आजकल संस्कृति के उद्योग के विभिन्न रूप केवल मनोरंजन के माध्यम ही नहीं हैं, वह समाज की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के ऐसे आसान साधन हैं जिनके लिए विशेष मानसिक तैयारी जरूरी नहीं है। यही कारण है कि आजकल कविता जैसी कला सांस्कृतिक जीवन के हाशिए पर जीने के लिए मजबूर है। जनसंचार के दृश्य माध्यम समाज में कविता विरोधी मन और माहौल पैदा करने में लगे हैं। रघुवीर सहाय ठीक ही कहते हैं कि वह प्रत्येक अनुभव को एक सनसनी और प्रत्येक मनुष्य को एक वस्तु बनाते हैं। यही नहीं, वह कला बोध की मानसिक प्रक्रिया और आदत को भी गहरे स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। दृश्य माध्यमों के कौशल के बोध और प्रभाव का स्वभाव कविता की कला के बोध और प्रभाव से एकदम भिन्न होता है। उसका बोध तुरंत और प्रभाव सनसनीखेज होता है। इसके विपरीत कविता का बोध समय चाहता है और प्रभाव दूरगामी भी होता है। पृष्ठ संख्या 212। दृश्य माध्यम मौसम की तरह तत्काल प्रभावित करते हैं, जबकि कविता जलवायु के समान धीरे धीरे अस्थायी परिवर्तन और प्रभाव पैदा करती है। मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद उत्पादन कला और कविता का दुश्मन है। इस कथन को गलत साबित करने की खूब कोशिश हुई है, लेकिन पूंजीवादी युग के सांस्कृतिक इतिहास ने मार्क्स के कथन को सच साबित किया है। इस युग के अनेक संवेदनशील कवियों और विवेकशील आलोचकों ने इस सच्चाई को पहचाना है। रूस की कवयित्री मरीना श्वेताएवा ने अत्यंत पीड़ा के साथ 1931 में लिखा था, यह शताब्दी एक कार के बदले 10 पुश्किनों को दे सकती है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध आलोचक एफ आर लिविस ने 1932 में कहा था कि आधुनिक संसार के लिए कविता का कोई खास महत्व नहीं है।